पृष्ठ संख्या एक अध्याय एक सिंधु सभ्यता में धर्म। ईसा पूर्व 2500 के लगभग भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग से एक ऐसी विकसित सभ्यता का ज्ञान 1921 ईस्वी में लोगों के समक्ष हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक दो केंद्रों की खुदाई से आना प्रारंभ हुआ, जिसकी तुलना में तत्कालीन विश्व की प्राचीनतम अन्य सभ्यताएं अपने विकास के क्रम में बहुत पीछे छूट जाती हैं। इस सभ्यता के ज्ञान से भारतीय इतिहास का आद्यतिहासिक काल बहुत पहले चला जाता है। यह इस देश का गौरव रहा है कि पश्चिमी विश्व वह जब जंगली सभ्यता की आंचल में ढका था, तो एशिया महाद्वीप के इस भारत देश में एक अत्यंत विकासमान सभ्य लोग रहते थे। इनका ज्ञान पुस्तकों से नहीं, उनके लिखित सामग्रियों से नहीं और न उनके पठनीय लेखों से, अपितु वहां के उत्खनित सामग्रियों से प्राप्त होता है। उनकी सभ्यता में धर्म का पक्ष अत्यंत समुन्नत था। एशिया की समकालीन अन्य पुरातन सभ्यताओं मिस्र बाबुलोनिया आदि में धर्म का वह बहुविधीय स्वरूप हमें नहीं मिलता, न इतना वैज्ञानिक पैठ ही मिलता है जितना हड़प्पा की सभ्यता में। इस सभ्यता का उदय सिंधु नदी की घाटी में होने के कारण इसे सिंधु सभ्यता तथा इसके प्रथम उत्खनित एवं विकसित केंद्र हड़प्पा के नाम पर हड़प्पा सभ्यता एवं आद्यतिहासिक कालीन होने के कारण आद्यतिहासिक भारतीय सभ्यता आदि नामों से जानते हैं। इनका विस्तार बलूचिस्तान, सिंध, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि विस्तृत क्षेत्र में था, ऐसा उत्खनन से ज्ञात होता है। इन सभी क्षेत्रों में स्थित केंद्रों की खुदाई से समान सभ्यता में के अवशेष मिलते हैं। अतः इस व्यापक भाग में उस समय हड़प्पा धर्म अवश्य ही पल्लवित रहा होगा। हड़प्पा धर्म के स्वरूपों के विषय में प्राप्त जानकारी के अनुसार उसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न ज्ञात होती हैं। एक, इस सभ्यता में प्रकृति से चलकर देवत्व तक की यात्रा धर्म ने तय की थी। एक ओर हम वृक्ष पूजा देखते हैं तो दूसरी ओर पशुपति शिव की मूर्ति तथा व्यापक देवी पूजा। दो, यहाँ देवता और दानव दोनों ही उपास्य थे। देव मूर्तियों के अतिरिक्त अनेक दानवीय स्वरूपों का यहाँ के ठिकड़ों पर आरेखन इस बात का परिचायक है। वृक्ष से लड़ता शेर दानवीय भावना का उद्गार ही तो कहा जा सकता है। तीन, धर्म में अध्यात्म और कर्मकांड दोनों ही यहाँ साथ उभरे हैं। यहाँ से प्राप्त धड़ विहीन ध्यानावस्थित सन्यासी की आकृति एक ओर आध्यात्मिक चेतना को उजागर करती है तो दूसरी ओर देवी के सम्मुख पशु बलि के लिए बधे बकरे की आकृति जो ठिकड़े पर अंकित है कर्म कांड की गहनतम भावना का द्योतक है। चार, उपासना इसका एक व्यापक अंग रहा है। नृत्य संगीत आदि के बीच देवी की पूजा को प्रदर्शित करने वाला ठिकड़ा भी यही व्यक्त करता है। पांच, कुछ ऐसे धर्मों की जानकारी यहाँ के ठिकड़ों से मिलती है जिसकी सूचना इस सभ्यता के पतन के लगभग 1000 वर्ष बाद हमें लिखित साहित्य प्रदान करते हैं, जैसे मातृ देवियों की उपासना। छह, प्रतीकों को धर्म में स्थान प्राप्त हो चुका था। सूर्य की तरह गोल रेखा वाली उभरती आकृति, स्वास्तिक आदि इस तथ्य के पोषक है कि भले ही विष्णु की मूर्ति यहाँ नहीं मिली पर वैष्णव धर्म के प्रतीक यहाँ विद्यमान थे। सात, धार्मिक मान्यता और विश्वासों का यह युग था। यहाँ एक शिवलिंग के नीचे गड़े ताबीजों की तरह के पत्थर के टुकड़े मिले हैं जिनके एक किनारों पर छिद्र बने हैं। संभवतः शिव के द्वारा अभिमंत्रित करने के लिए ही ये लिंग के नीचे गाड़े गए होंगे। अन्य कुछ ठिकड़ों में मानव देवताओं के साथ नृत्य संगीत तथा धार्मिक उत्सवों को मना रहे हैं। आठ, मंत्र तंत्र में भी इनका विश्वास रहा होगा। ठिकड़ों पर बने चिन्हों के ऊपर कुछ अपठनीय लिपि में लिखा है। इसे कोई चित्रांकित लिपि कहता है, कोई मात्र रेखा समूह मानता है, पर ये मंत्र रहे होंगे। कुछ ठिकड़ों पर तो विचित्र रेखाएं बनाई गई हैं, मानो आज के जंत्र तंत्र हो। 9. लोक धर्म का भी यहाँ चलन था। कुछ ठिकड़ों पर घेरों के भीतर वृक्ष, कुछ में फण निकाले नाक की आकृति आदि लोक जीवन की धार्मिक भावना को व्यक्त करते हैं। प्रमुख धार्मिक स्वरूप 1. शैव धर्म 1. पशुपति मूर्ति। यहाँ का ठिकड़ा मिलता है, इस पर एक तिपाई पर एक व्यक्ति विराजमान है। इसका एक पैर मुड़ा है और एक नीचे की ओर लटका है। इसके तीन सिर हैं तथा सिर पर तीन सिंह हैं। इसके हाथ दोनों घुटने पर हैं तथा इसकी आकृति ध्यानावस्थित है। इसके दोनों ओर पशु हैं। उसकी छाती पर त्रिशूल की आकृति अंकित है। मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी से मिली यह मूर्ति आज के शंकर भगवान की है। मैके ने भी इसे शिव की मूर्ति माना है। कुछ लोग इसे पशुपति की मूर्ति मानते हैं। जो भी हो, यह शिव के पशुपति रूप की मूर्ति निर्विवाद लगती है। इसके तीन सिर शिव के त्रिनेत्र के द्योतक हैं तथा तीन सिंह शिव के त्रिशूल के प्रतीक स्वरूप हैं। 2. नर्तक शिव। यहाँ से प्राप्त दो कबंध प्रस्तर मूर्तियां जो पैरों की भावभंगिमा के कारण नृत्य की स्थिति का बोध कराती हैं, नर्तक शिव की मानी जाती हैं। कुछ इतिहासकारों ने इन्हें नृत्य मुद्रा में ऊर्ध्वलिंगी होने का भी अनुमान लगाया है। 3. योगी शिव। यहाँ के एक ठिकड़े पर योग मुद्रा में ध्यान की स्थिति बैठे शिव की आकृति का अंकन है। इसके सामने दो तथा दोनों बगल में बैठी एक एक सर्प की आकृति बनी है। 4. बनचारी शिव। शिव का एक रूप बनवासी का भी होता है। यहाँ एक ठिकड़े पर तीन धनुष चलाते हुए एक आकृति मिली है। इसे शिव का बनचारी स्वरूप माना जाता है। लिंग पूजा। बड़े तथा छोटे शिवलिंग तथा यहाँ बहुत से मिले हैं। कुछ के ऊपर छेद हैं, जैसे ये धागा में पिरोकर गले में पहनने के काम आते होंगे। बड़े लिंग चूना पत्थर और छोटे घोंगे के बने हैं। इनकी पूजा विभिन्न समुदायों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से करने का अनुमान लगाया जाता है। इन विविध प्रकार की शिव मूर्तियों की प्राप्ति के आधार पर अनुमान किया जा सकता है कि 1. शिव आर्यों के पूर्व भारत के मूल निवासियों, जंगली कबीलों तथा आर्येतर जातियों के देवता प्रारंभ से रहे हैं। इसी से इनका रंग काला था, जबकि आर्य गौर वर्ण के थे। अगर यह आर्यों के देवता रहे होते तो इनका भी रंग गोरा ही वर्णित होता। इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि जंगली पशु उनके साथ जुड़े हैं, जैसे सर्प, सांड आदि। जंगली कबीलों के लोग शक्तिशाली होते हैं, तभी शिव शक्ति के देवता के रूप में भी भारतीय जीवन में घुले मिले हैं। इनके साथ लगा होता है वाहन, नंदी, बैल, जो शक्ति का प्रतीक है। सांप भी इसी प्रकार का एक जुझारू जीव इनके साथ जुड़ा है। ये बलशाली और वन्य पशु हैं जो शिव के साथ जुड़े होते हैं। शिव को उत्पादन के देवता के रूप में भी पूजा जाता था। शिव के साथ सांड का साहचर्य उनके उस काल के उत्पादक देवता होने का बोधक है। आज भी कृषि में उत्पादन के लिए सांडों तथा बैलों का प्रयोग किया जाता है। शिवलिंग का यहाँ मिलना डॉक्टर डीडी कौशाम्बी के अनुसार उत्पादक का द्योतक है। प्राचीन भारत में शिव पूजा का श्री गणेश हड़प्पा निवासियों के समय से ही माना जाता है। शिव के विविध रूप मानवाकृति, लिंगायत, पशुपति आदि इसी समय से प्रचलन में आ चुके थे। यही पीछे चलकर हिंदू शैव परिवार में अलग अलग धार्मिक संप्रदायों के रूप में प्रमुख स्थान ग्रहण कर लिए। द योग मुद्रा की शिव मूर्तियों से स्पष्ट होता है कि योग क्रिया का विकास भी शिव के साथ जुड़ा है। यह मान्यता है कि उनकी योग साधना अनादि काल से चली आ रही है। योग की विधि का भी बहुत कुछ ज्ञान यहाँ से उनकी प्राप्त विभिन्न योग मुद्राओं की मूर्तियों से परिलक्षित होता है। यहीं से आगे चलकर पशुपति योग का विकास हुआ। यहाँ से प्राप्त सन्यासी की धड़ मूर्ति, जिसकी आंखें अर्ध निमिलित है, ध्यान केंद्रित है तथा उसकी आंखें नासिकाग्र पर टिकी है, आदि विशेषताएं भी ही योग साधना का पहला आधार बना होगा। यही योग का पहला चरण है। अतः योग का प्रारंभ भी शैव धर्म का देन रहा होगा। यह शंकर का नाम पौराणिक काल में भूतनाथ प्रसिद्ध हुआ, पर भूत प्रेतों के प्रति लोगों का विश्वास सिंधु सभ्यता के समय से ही उभर चुका था और संभव है उस समय भी शंकर ही उनके स्वामी रहे हों। तब भी शुभ अशुभ प्रभावों की मान्यताएं थी। इनसे बचने के लिए योनि पूजा भी सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। कुछ विशिष्ट बीमारियों का संकेत यहाँ से उपचारात्मक सामग्रियों की प्राप्ति से होती है, जैसे बारह सिंगे की सिंह का भस्म आदि। इनसे छुटकारा पाने के लिए ही छोटे छोटे लिंगों को योनि के साथ ताबीज की तरह गले में धारण करते होंगे, जिससे सिंधु घाटी में बहुत से ऐसे योनि युक्त शिवलिंग के तरह ही की कोड़ाकार पत्थर की आकृतियां मिली हैं, जिनके ऊपरी भाग में संभवतः धागा पिरोने के लिए छिद्र बने हैं। इससे यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि बीमारियों का संबंध भी तब शिव से माना जाता होगा तथा उनके उपचार के लिए शिवलिंग का धारण करना टोटका के रूप में मानते होंगे। दो, वैष्णव धर्म। स्पष्ट रूप से तो नहीं कहा जा सकता है कि हड़प्पावासी वैष्णव धर्म को मानते थे, क्योंकि विष्णु या उनके अवतारों की मूर्तियां यहां नहीं मिली हैं, पर यहां से प्राप्त कुछ ठिकड़ों पर बनी स्वस्तिक की आकृति तथा सूर्य का चिन्ह इस बात का द्योतक है कि पीछे वैष्णव संप्रदाय के विकास के साथ जुटने वाले ये विष्णु के प्रतीक बीज रूप में जुड़े थे। अतः वैष्णव संप्रदाय वहाँ अस्तित्व में भले ही विकसित रूप में न आया हो, पर इसका बीजारोपण इस समय हो चुका था, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तीन, शाक्त संप्रदाय। शक्ति पूजा प्राचीन विश्व की प्राय सभी सभ्यताओं में होती रही है। तभी शक्ति को आदि शक्ति माना जाता है। सिंधु घाटी से भी देवी उपासना के चिन्ह प्राप्त होते हैं। सिंधु सभ्यता में एक ठिकड़े पर अंकित एक स्त्री की नाभि से निकला हुआ कमलनाल दिखाया गया है। यह उत्पादन एवं उर्वरता का द्योतक बोधक है। शक्ति की उपासना पृथ्वी पूजा से जुड़ी है। वहीं से मातृ देवी की उपासना का प्रारंभ माना जाता है। यहाँ इन सभी का संबंध पृथ्वी देवी से और पौधे का संबंध उर्वरता और सृजनशीलता से जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार की एक मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसमें देवी पालथी मारे बैठी हैं और उसके दोनों ओर पुजारी भी बैठे हैं तथा इसके सिर पर एक पीपल का वृक्ष उगा है। इसको भी उत्पादकता का ही प्रतीक माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में मातृ देवियों की मूर्तियों का यहाँ मिलना द्योतक है कि ये लोग देवी के उपासक थे। इनकी देवियाँ अविवाहिता कन्याएं होती थी, क्योंकि उनके स्तन सामान्य उभार के साथ तथा गोल और अविकसित दिखते हैं। अनेक प्रकार के आभूषणों और केश विन्यास से सज्जित देवियों को देखकर यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि विविध देवियों की मान्यता यहाँ रही होगी, अन्यथा सर्वत्र एक ही प्रकार की देवी मूर्तियां प्राप्त होती। एक बात और ज्ञात होती है कि ये प्रकृति को मातृ देवी के रूप में मानते थे, तभी देवियों के साथ प्रकृति अवयव यहाँ जुड़ा मिला है। प्रकृति ही के सहारे जीव का पोषण होता है, संभवतः ऐसा इनका विश्वास था। एक ठिकड़े पर सात औरतों की खड़ी आकृतियां बनी हैं और उनके सामने एक बकरा बंधा है जिसके पीछे लोग ढोल बजाते हुए नाच रहे हैं। देवी उपासना की पौराणिक परंपरा में सप्त मातृका एवं नौ मातृका के उपासना का वर्णन मिलता है। यहाँ भी सप्त मातृका के उपासना का बोध होता है। एक ठिकड़े पर सात औरतों का अंकन इसका बोधक है। दूसरी ओर पौराणिक शाक्त धर्म में देवी के लिए पशु बलि की मान्यता समाज में प्रचलित है। यहाँ एक ठिकड़े पर बंधा बकरा बलि के हेतु उपस्थित प्रतीत होता है। पौराणिक देवी पूजन का प्रारंभ इसे मान सकते हैं। यहाँ से प्राप्त नारी मूर्तियों में एक विशेषता मुख्य रूप से दिखती है कि वे निर्वस्त्र हैं। निर्वस्त्रता प्रकृति के खुलेपन तथा उत्पादन का बोधक है। इससे हम कह सकते हैं कि ये प्रकृति की मातृ देवी मानकर उपासना करते थे। इसकी पुष्टि यहाँ के एक ठिकड़े पर प्राप्त एक देवी की मूर्ति से होती है जिसके सिर पर चील की तरह का एक पक्षी पंख फैलाए बैठा है। लगता है कि वह मातृ देवी की रक्षा कर रहा हो। चार, वृक्ष पूजा। पौराणिक काल से पीपल, नीम, आंवला आदि वृक्षों की पूजा समाज में की जाती है तथा इनसे संबंधित अनेक त्योहारों की मान्यता भी दी गई है। सिंधु घाटी की सभ्यता में भी वृक्ष पूजा का चलन था, तभी वहां से प्राप्त ठीकड़ों पर अनेक वृक्षों की आकृतियां अंकित हैं। इनके पत्तों के आधार पर पीपल के वृक्ष की पहचान तो हो जाती है, पर यह असंभव नहीं कि इसी प्रकार अन्य वृक्षों की भी महत्ता इस समय रही हो। एक ठिकड़े पर बनी आकृति में एक सींग वाले पशु के दो सिर बने हैं जिनके ऊपर पीपल की कोमल पत्तियां फूटती हुई दिखती हैं। पीपल दीर्घायु स्वास्थ्य के लिए लाभकारी छायादार होने के कारण आज की तरह उस समय भी संभवतः पूज्य मान लिया गया होगा। संभवतः तब से अब तक उसकी धार्मिक महत्ता बनी रही। ऋग्वेद में अश्वत्थ की महत्ता का उल्लेख भी पीपल का ही बोधक है। दूसरी मुहर पर देवता की नग्न मूर्ति बनी है, उसके दोनों ओर पीपल की दो शाखाएं अंकित हैं। यहाँ की एक मुहर पर वंदना की मुद्रा में झुकी एक मूर्ति है जिसके बाल लंबे हैं। उसके पीछे मानव के चेहरे वाले वृक्ष तथा बकरे की मिली जुली आकृति अंकित है। सामने पीपल का पेड़ है। लगता है कि ये पशु वृक्ष देवता के वाहन के रूप में वहां अंकित किए गए हैं। सुंग कला में सांची तथा भरहुत में ऐसे वृक्ष देवियों की अनेक आकृतियां अंकित है जिन्हें दोहत की अवस्था में अंकित यक्षिणी कहा जाता है। इन भिन्नताओं के आधार पर डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार वहां पर दो प्रकार की वृक्ष पूजा प्रचलित थी, एक वृक्ष की पूजा तथा दूसरे वृक्ष अधिदेवता की पूजा। पांच, पशु पूजा। वहां की मुहरों पर अनेक प्रकार के पशुओं का अंकन मिला है। विविधता और संख्या में पशु अंकन की अधिकता को देखकर ऐसा लगता है कि ये पशुओं को देवता का अंश मानते थे। यह विश्वास है कि पहले पशुओं के रूप में देवताओं को स्वीकार किया जाता था, पीछे इनका मानवीय रूप अंगीकार किया गया। इसी से प्रत्येक पुरातन सभ्यता में पशु पूजा का चलन मिलता है। इसका प्रमाण है कि प्रायः प्रत्येक देवता के साथ एक वाहन का जुड़ा होना आज भी स्वीकार किया जाता है। दूसरे इस सभ्यता में हम देखते हैं मनुष्यों के रूप में निर्मित देवताओं के सिर सिंह धारण करने की कल्पना यह किया गया था। सिंह को शक्ति का प्रतीक माना जाता था, इसी से इसको मानव रूपधारी देव भी कहते थे। इसलिए आज जिन्हें हम देव वाहन मानते हैं, जैसे गैंडा, बैल, हाथी, भैंस, कुत्ता आदि, इनके भी चित्रण यहाँ की मुहरों पर मिलते हैं। बैल की पूजा विशेष रूप से यहाँ होती होगी क्योंकि इसके विविध प्रकारों का अंकन यहाँ के मुहरों पर बहुतायत से दिखता है, जैसे एक सिंगी कुबड़दार, लंबी लटकी लोरदार आदि। लगता है कि शिव के साथ बैल का संबंध इसी सभ्यता से शुरू हुआ था। क्योंकि यहाँ इन दोनों की सात आकृतियां मुहर पर बहुलता से अंकित मिलती हैं। कुछ पशु ऐसे भी बने हैं जो काल्पनिक प्रतीत होते हैं, आज भी उनका वास्तविक स्वरूप प्राप्त नहीं होता। उनमें हम ऐसे पशुओं को ले सकते हैं जिनकी रचना विभिन्न पशुओं के अंगों के योग से की गई है, अन्यथा ये मानव और पशु की मिली जुली मूर्ति हो। एक ठिकड़े पर मानव सिर से युक्त बकरे की आकृतियां हैं, एक पर ऐसा पशु बना है जिसका सिर गैंडे का, पीठ किसी दूसरी पशु का, पूंछ किसी अन्य पशु की है। कुछ पशुओं की ऐसी आकृतियां यहाँ बनी है जिनके सामने नाद बना है और वे उसमें से कुछ खाते हुए दिखते हैं। कितने पशुओं की खोपड़ी धूपदानी की तरह कटोरा नुमा बनी है, इसमें संभवतः पूजा के समय धूप जलाया जाता होगा क्योंकि उनके किनारे पर धुएं के चिन्ह बने पड़े हैं। लगता है कि पशु पूजन में धूप जलाने का भी प्रचलन था। 6. जैन धर्म। सिंधु घाटी की मूर्तियों में बैल की आकृतियां विशेष रूप से मिलती हैं। वृषभ शब्द का अर्थ है बैल। आदिनाथ या वृषभनाथ जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे, उनका चिन्ह बैल है। सिंधु घाटी से प्राप्त बैल की आकृति सूचक है कि उस समय जैन धर्म का बीजारोपण हो चुका होगा। यहाँ से प्राप्त एक नंगी कबंध मूर्ति जो ग्रेनाइट पत्थर की बनी है, उसे कुछ विद्वान जैन धर्म से संबंधित मूर्ति मानते हैं क्योंकि जैनियों की नग्न मूर्ति की तरह यह है। दिगंबर समुदाय वाले जैन भिक्षु नग्न ही रहते हैं। 3. यहाँ की एक मूर्ति को मार्शल ने कार्योत्सर्ग नामक योगासन में खड़ा बतलाया है। इससे लगता है कि योग की क्रिया जो जैनियों में व्यापक थी, यहाँ से प्रारंभ हुई। इसलिए भी यह माना जा सकता है कि उक्त मूर्ति का संबंध जैन धर्म से रहा होगा। मान्यता और विश्वास। अ स्वच्छता। इसके ये पुजारी थे, इसी से यहाँ विशाल स्नानागार तथा गर्म स्नानागार बने हैं। ये सामूहिक स्नान के लिए बनाए गए। व्यक्तिगत स्नान के लिए प्रत्येक घर के आंगन में स्नान गृह होता था। लगता है उत्सवों तथा पर्वों पर आज के पौराणिक धर्म की मान्यता की तरह लोग सामूहिक स्नान करते होंगे, तभी विशाल स्नानागार की आवश्यकता पड़ी होगी। मृतक ब मृतक संस्कार। मृतक क्रिया में इनका विश्वास था। मरने के बाद ये शरीर की क्रिया करते थे, उसे गाड़ते या जलाते थे। जलाने के बाद बची हुई हड्डियों को एकत्रित करके किसी बर्तन में रखकर उसे प्रवाहित कर देते थे। कभी कभी इसे गाड़ भी देते थे। जिन मृतकों को गाड़ते थे, उनके साथ उनकी प्रिय वस्तुएं भी गाड़ दी जाती थी। यही प्रथा प्राचीन मिस्र के पिरामिडों में भी दिखती है। इसका प्रमाण है हड़प्पा और बलूचिस्तान में सर्वांगीण शव निखात प्राप्त हुए हैं। स जादू टोना। यहाँ से प्राप्त ठिकरों पर कुछ लिखा हुआ है। लगता है ये जादुई मंत्र होंगे, इनके द्वारा लोग अपने कार्यों को सिद्ध करते होंगे। इसी प्रकार लिंगों के नीचे गड़े ताबीज जिन पर कुछ अंकित है, जादू की क्रिया का होना सिद्ध करते हैं। संभव है ये इन ताबीजों को इसलिए पहनते होंगे कि भूत बाधा इन्हें न सतावे। इसी प्रकार कुछ ऐसे ठिकड़े भी मिले हैं जिन पर विचित्र प्रकार के चित्र बने हैं। ये तांत्रिक चिन्हों की तरह है, जिस प्रकार का प्रयोग आज तंत्र में होता है, लगता है कि इनको विश्वास था कि इनके द्वारा बाधाओं के निराकरण में सहायता मिलती है। बलि प्रथा। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि का प्रयोग किया जाता था। इसके संदर्भ में जैसा हमने ऊपर देखा है कि सप्त मातृकाओं के सामने एक बकरा बंधा है, यह बलि पशु की ही रहा होगा। यह धार्मिक पर्व और उत्सव। यहाँ के कुछ ठिकड़ों पर नृत्य संगीत के सामूहिक अवस्था का अंकन हुआ है। लगता है कि किसी विशेष उत्सव या पर्व पर इस प्रकार के सामूहिक आमोद प्रमोद की व्यवस्था का चलन था। सामूहिक स्नान के लिए जलकुंडों का होना सिद्ध करता है कि उस समय पर्व मनाए जाते थे, जहां लोग एक साथ एकत्रित होकर आज की पौराणिक मान्यताओं की तरह सामूहिक रूप से स्नान आदि धार्मिक क्रियाएं करते रहे होंगे।